मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा।
अश्विनी जी, पिछले अंक में हम आपसे बात कर रहे थे आपके रेडियो के 1930 से शुरू हुए सफर पे, और आपका सफर जो शुरू हुआ 1975 में
जी।
1975 का जो दशक रहा है, जो 1975 से 84 तक का, जिसे मैं कहूंगा भारत में बहुत ही गंभीर समय था राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से।
बिल्कुल,
ये वो समय है जहां पर इंदिरा गांधी को, जिसे आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, ने इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति पैदा की, और 1984 में जो खत्म होता है उनकी मृत्यु से। आप उस दशक में अपना सफर शुरू करते हैं रेडियो पे, और 1982 में आप न्यूज पढ़ रहे हैं, तो कैसा था वो काल?
ऐसी यादें हैं कि 1975 में जब मैंने ज्वाइन किया, इमरजेंसी का दौर था, हम ब्रॉडकास्टिंग पर बहुत सारे मर्यादाएं लगा दी गई, हमें बहुत से कार्यक्रम जो उस सरकार द्वारा चलाए गए थे, 20 सूत्री कार्यक्रम के कुछ स्लोगन्स दिए जाते थे जिनको पढ़ा जाए बीच बीच में कार्यक्रमों के, आपको बहुत सी चीजों को ना करने की इजाजत थी, और बड़ी एक, कहा जाए तो एक सीमित परिक्षेत्र में आपके कार्यक्रमों का स्वरूप निर्धारण करना पड़ता था। वो दौर देखा, और उसके बाद मुझे रोहतक जाने का मौका मिला। आकाशवाणी का पहला केंद्र हरियाणा में स्थापित हुआ रोहतक
जी,
और सौभाग्य से मैं वहां की पहली आवाज बना। तो वहां वही दौर चल रहा था, उनके साथी इमरजेंसी के जो काफी प्रकोप, जिसे कहा लोगों ने
जी,
मैं जनता की भाषा में वो शब्द कह रहा हूँ, था, लोगों की नसबंदी हो रही है, लोगों को समय से ऑफिस आना है, ट्रेन्स लेट नहीं हो रही हैं, दफ्तर में सब समय पे आ रहे हैं वरना उनको कड़ी सजा मिल रही है। एक तरह से देश में बदहवासी का माहौल बना, उसके बाद एक व्यवस्था सी बनने लगी, लोगों ने विरोध करना भी शुरू किया, और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन वहां से निकलना शुरू हुआ, आवाजें उठने लगी कि इसका विरोध किया जाए, और शायद उसी विरोध के कारण, उसी जन प्रबल भावना के कारण 77 में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा।
बिल्कुल, तो जो 1975 से 1982 तक आपके कंटेम्पररीज थे, समकालीन थे आपके, आवाजें, उनके बारे में कुछ बताइए।
अरे वाह, तो जैसा मैंने कहा, एक तो मेरे गुरु पांडे जी जो 1982 में रिटायर हुए
जी,
और वो रहे देवकी नंदन पांडे जी के साथ, दूसरा नाम है, बड़ा नाम है, जिसे हिंदी प्रसारणकर्ता के रूप में जाना जाएगा, श्री अशोक वाजपेयी जी।
जी,
देवकी नंदन पांडे, अशोक वाजपेयी जी, श्रीमती इंदु वाही
जी,
विनोद कश्यप जी
जी,
और कृष्ण कुमार भार्गव
जी,
और मनोज मिश्र जी, और अनादि मिश्र, ये वो बड़े नाम थे,
ये आवाजें थी हिंदी,
ये आवाजें
उस समय की बड़ी,
ये तो न्यूज के लोग थे
जी,
समाचार के लोग थे, अनाउंसर्स में शमीम जायसी जो रेडियो सिलोन से आए थे
जी,
ओम शर्मा जी
जी,
पुष्पा नटराजन
जी,
जो सैनिकों के लिए एक प्रोग्राम करती थी 5 बजे गीतों का
जी,
और वो अपने बालों में गुलाब का फूल लगाया करती थी, उनको सुनने, मेरे ख्याल में सैनिकों में से कोई ऐसा सैनिक रहा होगा जो वो प्रोग्राम नहीं सुनता होगा। ऐसे ही विपिन मित्तल, और बहुत अच्छे नाम और बहुत अच्छे प्रसारणकर्ता।
अपने सुनने वालों को चाहूंगा कि SMS कीजिए 0429996263 पर, और बताइए कितने नामों को आपने सुना है भारत में रहते हुए जो अश्विनी जी ने अभी अभी हमें बताए। अब सफर को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं 1982 पे, जब आपने न्यूज पढ़ना शुरू किया
जी,
और कब तक आप न्यूज पढ़ते रहे, और उसके बाद का सफर क्या रहा रेडियो का?
मैं अनाउंसर के रूप में, जैसा मैंने बताया, दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद रोहतक चला गया, फिर बिजनौर जिले के नजीबाबाद आ गया, और वहां से 82 में मुझे एशियन गेम्स के 2 दिन पहले मैंने ज्वाइन किया एज ए समाचार वाचक, एज ए न्यूज कास्टर दिल्ली में। दिल्ली में शुरू हुआ सफर एक बहुत रोचक तरीके से, क्योंकि एक तो एशियन गेम्स का दौर था, वो समाचार पढ़ने को मिले, वहां पे एक स्पोर्ट्स में मेरी रुचि भी रही है, मैं फुटबॉल की कमेंट्री करता था, हॉकी की करता था
जी,
तो कुछ खेलों को भी नजदीक से देखने का मौका मिला, कमेंट्री करने लगा, फिर सामान्य कमेंट्री मैंने शुरू की करनी, जो भी ऐसे समारोह होते थे जैसे राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो रहा है, या किसी स्थान पर कोई शिला स्थापित की जा रही है, इंदिरा गांधी का जो शक्ति स्थल है,
तो वो लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे।
लाइव ब्रॉडकास्ट।
तो अब जैसे आपने कहा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह और फुटबॉल का खेल, दोनों में आवाज का नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, कहीं तेजी से ना चल पड़े, राष्ट्रपति जी अब मौत चुके हैं मैदान की तरफ, और कहीं भूल जाते हैं कि वो कहां पर क्या कार्य कर रहे हैं, तो कुछ आपके साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो फनी हो या शेयर करना चाहिए?
लेकिन 2 इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा
जी।
एक बहुत अच्छा है, जब वो शक्ति स्थल पे मैं आंखों देखा हाल सुना रहा था, तो एडमंड हिलेरी मेरे पास खड़े थे
जी।
और एडमंड हिलेरी जी से उसके बाद भी मेरी बात हुई, उनके हस्ताक्षर लेने का सौभाग्य मिला। तो वो बहुत मन में एक गहरे समाई है वो बात की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने कीर्तिमान स्थापित किए, सारी दुनिया जिसकी प्रशंसक है, उससे मिलने का अवसर मिला। और दूसरा एक बहुत रोचक स्थिति रही, जब मैं 1977 में मॉस्को जाने का मौका मिला मुझे, भारतीय इंडियन फेस्टिवल इन USSR ये हो रहा था, यानी तब ये USSR था, वो देश ही अब नहीं है
जी।
अब तो उसके कई
टुकड़े हो गए,
देश बन गए, उसके हिस्से हो गए। तो वहां पर USSR में फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी के कमेंट्री के लिए मैं हिंदी में कमेंट्री कर रहा था। उसके पहले जब हम जा रहे थे तो वहां पर हमें 5-6 प्रसारणकर्ताओं को, जो एक हमारी इंटरप्रेटर थी रशिया की, वो लेके जा रही थी, टेलीविजन के प्रोड्यूसर। तो बाहर खड़े हुए दर्शक और बहुत से जो वहां लोग थे वो हाथ हिला रहे हैं, उनमें कुछ हिंदी का थोड़ा सा ज्ञान जिनको था, उस पर प्लेक पे लिखा हुआ था इंडिया का कॉन्टिनेंट है ये, तो बड़े उत्सुक। और वो बहुत, तो एक लड़की बड़ी आवेश में आई और उसने मुझे गले लगा लिया
जी।
और मेरी समझ में नहीं आया अचानक कि क्या हुआ। तो मैं जैसे ही कमेंट्री शुरू हुई
जी,
तो मैंने उसको इस तरह से ओपन किया, मैंने कहा ये जो आलिंगन उस युवती ने मुझे किया है, ये मेरे लिए नहीं, ये भारत के उस हर व्यक्ति के लिए है जिनके लिए इनके मन में इस समय स्नेह, आदर और एक स्वागत उमड़ रहा है, और इस स्वागत और स्नेह का हम अभिवादन करते हैं। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज भारतीय उत्सव यहाँ हो रहा है, तो इनके मन में भी वो दोस्ती की, वो रिश्तों की महक और खुशबू और गर्माहट दिखाई पड़ रही है, ये आलिंगन उसी के लिए है। और इस बात को कमेंट्रेटर्स के, इस कमेंट्री को हिंदुस्तान में जिन लोगों ने सुना, उसमें एक बहुत बड़े क्रिटिक थे नील बत्रा, उन्होंने मेंशन किया, और मेरे DG ने इस बात के लिए मुझे बहुत तारीफ की थी मेरी, कि भाई तुमने जो महसूस किया वहां से ओपन किया, क्योंकि वो बिल्कुल गेट के बाहर ये हुआ और मैंने कमेंट्री शुरू की
जी। अश्विनी जी के साथ अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी तो 04299626263 पर जरूर बताइए, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे अगले अंक में।
मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा।